ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధశ జ్ఞానాంజనాశలాకయ చక్షురుమిళితం ఏన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూపాత్తమయం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపాం సాగ్రజాతం సహగనా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగనా లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానోసుతే దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరువ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. తో ముజే సమజ్ మే నహీ ఆ రహా హై कि चैतन्य चरितामृत से पढ़े या फिर अलवरों के बारे में चर्चा करें, तो आप बता सकते हैं क्या करना चाहिए? चैतन्य चरितामृत से पढ़ते हैं तो चैतन्य चरितामृत हम चर्चा कर रहे थे जब हम उडुपी में थे. कहां थे तो हम कहां आए थे चैतन्य महाप्रभु के साथ ट्रैवल करते हुए? किसको याद है? किसी को याद है हम चैतन्य चरितामृत जब चर्चा कर रहे थे तो कहां थे? तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को सार्वम भट्टाचार्य विदा करते हैं, और जैसे चैतन्य महाप्रभु निकल पड़ते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित होकर वहां गिर पड़ते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से मुड़कर नहीं देखते. तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जो सेंटली पर्सन हैं, महान व्यक्ति हैं, उसका जो स्वभाव है, नेचर है, वो दो प्रकार का है. किससे तुलना की थी? पुष्प समक कोमल और कठिन वज्रमाय. ये दो उसके नेचर है एक महान व्यक्ति के. उसका स्वभाव होता है कि वो इतना सॉफ्ट होता है कि कमल के पुष्प के समान. और दूसरा, वो जो व्यक्ति है या महान भक्त है भगवान का, वो स्वभाव इस प्रकार से भी प्रदर्शित करता है कि वज्र के समान कठोर भी होता है. तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के वियोग में गिर पड़ते हैं तो चैतन्य महाप्रभु पीछे मुड़ के नहीं देखते और आगे निकलते हैं. तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति को भौतिक आसक्तियों को त्याग कर आगे निकल जाना चाहिए, कठोर होकर. जैसे चैतन्य महाप्रभु भी अपना घर छोड़ते हैं और जिसमें अपनी नवविवाहित पत्नी का त्याग करते हैं, अपनी एकलौती माता का त्याग करके सन्यास को स्वीकार करके जगन्नाथपुरी पदार्पण करते हैं. तो ऐसे जब सार्वभौम भट्टाचार्य वहां गिरे तो नित्यानंद प्रभु उनको उठा लेते हैं वहां से और उनको वापस जगन्नाथपुरी भेजते हैं उनके लोगों के साथ. तो यहां तक हमने उस दिन रीडिंग किया था जब हम उडुपी में थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो आगे कृष्णदास कविराज लिखते हैं, भक्तगण शीघ्र आसी लैल प्रभु साथ, वस्त्र प्रसाद लैया तबे अयला गोपीनाथ। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु स्वयं साउथ इंडिया के टूर, साउथ इंडिया की यात्रा के लिए निकले थे, तो सारे भक्तों ने अलग अलग प्रसाद, अलग अलग वस्तुएं चैतन्य महाप्रभु के लिए लेकर आ गए। और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद और दूसरा उनके लिए क्लोथ्स, उनके जो कपड़े हैं, ये दोनों चीजें उनको देते हैं। सभा संगे प्रभु तबे अलाल नाथ आयला, नमस्कार करी तारे बहु स्तुति कैला। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाने से पहले अलग अलग चीजों का परमिशन लेते हैं कि मैं निकल रहा हूं बाहर और दूर की यात्रा में जा रहा हूं। तो सबसे पहले उन्होंने अपने जो क्लोज डिवोटीज थे उनका परमिशन लिया, आज्ञा ली, और दूसरा उन्होंने सार्वम भट्टाचार्य की आज्ञा ली, और तीसरा उन्होंने भगवान जगन्नाथ का परमिशन लिया। तो ये एक प्रोसेस है कि हम दूर कहां ट्रैवलिंग में जाते हैं आध्यात्मिक यात्राओं में, तो हमें इस प्रकार से भगवान गुरु और भक्तों से परमिशन लेना चाहिए। जिसके द्वारा क्यों परमिशन लेना चाहिए, क्योंकि हमारी यात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं परमिशन लेकर जा रहा हूं और ये आशा करता हूं कि बिना किसी कठिनाई के मैं वापस जगन्नाथपुरी पहुंचू। हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फिर अपने भक्तों के साथ, हाँ, जैसे आप अभी साउथ इंडिया आए हो तो आपके घर वाले आपको छोड़कर छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आए होंगे, नहीं तो नहीं आए थे? कुछ लोगों के तो आए थे, जिनके पास है नहीं कोई तो वो नहीं आए होंगे उनको ड्रॉप करने के लिए। हाँ, सारा परिवार ही आ गया तो कौन ड्रॉप करेगा उन्हें। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का जो रेलवे स्टेशन था वो अलालनाथ था। कौन सा था? जैसे हम अपने घर में हैं, घर से ट्रैवलिंग शुरू करना, यात्रा शुरू करनी है तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या निजामुद्दीन हम आ गए थे, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में स्टे कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी एक स्थान में जाना है जिसके आगे उनके जो डिवोटीज है या कोई उनके साथ नहीं आएगा, वो अकेले होंगे अपने असिस्टेंट के साथ। हाँ, तो वो स्थान कौन सा था? अलालनाथ। तो अलालनाथ में एक विशेष भगवान के विग्रह हैं। तो जो चतुर्भुज रूप के हैं और जिनको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उनको अलवर नाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवर नाथ, अलवरों के जो नाथ हैं। तो ये जो 12 अलवराज है उनके वो वास्तव में नाथ हैं। या इससे पूर्व जब उस विग्रह की स्थापना ब्रह्मा ने किए थे और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को वहां सेवा करने के लिए बुलाया था, तो ब्राह्मणों को भी अलवराज कहा जाता है और वह उनकी सेवा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां आते हैं, आते ही सबसे पहले क्या करते हैं? नमस्कार करी तारे बहु स्तुति कैला। तो जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दो चीजें हमें करनी चाहिए। दो चीजें क्या? कि भगवान को देखने मात्र से हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ये जो शरीर है उसका लाभ तभी है या बेस्ट यूज क्या है इस बॉडी का, कि जो भगवान के आगे समर्पित हो जाए, अन्यथा ये बॉडी मृत्यु के आगे समर्पित होने वाला है एक दिन। चाहे ये सुंदर शरीर है लेकिन एक दिन इसको बुढ़ापा आने वाला है। ये सब काले बाल हैं, एक दिन वो क्या होने वाले हैं? सफेद होने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये जो शरीर है और शरीर के सारे अंग जिनको कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। हाँ, अन्यथा ये शरीर, प्रभुपाद कहते हैं, भगवान की ओर जाने के लिए सबसे बेस्ट व्हीकल है, गाड़ी है। अन्यथा नरक जाने के लिए भी ये क्या है? बेस्ट व्हीकल है ये बॉडी। तो बेस्ट इसका यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे महाराज अम्बरीश ने इसका इस्तेमाल किया था। वो राजा थे, राजा होकर भी उन्होंने अपने पूरे शरीर को भगवान की सेवा में नियुक्त किया था। हाँ, कैसे? कि अपने मन से भगवान का स्मरण करते थे, आंखों से भगवान और भगवान के भक्तों को देखते थे, कानों से भगवान की कथा, नाम, रूप, गुण आदि को सुनते थे, जीवा से क्या करते थे, कृष्ण प्रसाद खाते थे और जोर से बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज अम्बरीश ने इस प्रकार से पावन से भगवान के मंदिर जाने के लिए, मंदिर की परिक्रमा करने के लिए पावन का इस्तेमाल करते थे, हाथों से तालियां बजाना, करताल मृदंग बजाने के लिए या भगवान की सेवा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। और ये जो सर है, माथा है, इसको भगवान के सामने झुकने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो इस प्रकार से पूरा शरीर और शरीर के सारी जो इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाते थे, इसी को भक्ति कहते हैं। कोई कहे कि भक्ति क्या है, सरल है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तः तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि अपने इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी जो कृष्ण है उनकी सेवा करना ही क्या है, भक्ति है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना सेवा के रहे, या हम अपने मन की सेवा कर सकते हैं या हम किसी ना किसी की सेवा में लगे हैं। तो बेस्ट क्या है कि हम अपने इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं। तो इस प्रकार से ये प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु। और दूसरा है भगवान की स्तुति। जब हम विग्रहों का दर्शन करते हैं तो भागवतम में कहा गया है भगवान को कैसे देखना चाहिए। भगवान को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि जैसे रोड पर किसी कुत्ते को देखते हो आप, हाँ, भगवान को देखना चाहिए, भगवान को निहारते हैं, हाँ, भगवान वास्तव में आंखों को देखने के लिए कोई चीज बनी है तो वो कौन है, कृष्ण है। तो ऐसे आंखों से कृष्ण को, कृष्ण का जब हम दर्शन करते हैं तो उनके चरणों से हमें उनका दर्शन शुरू करना चाहिए, चरणों से धीरे धीरे हमें उनके मुख कमल तक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि भगवान ने कौन कौन से वस्त्र पहने हैं, अलग अलग अंगों में कहाँ कहाँ कौन कौन से आभूषण उन्होंने धारण किया है, हाथों में क्या पहना है, बाजूबंद आदि वो में क्या है, या फिर उनके कानों में कुंडल, उन्होंने किस प्रकार से तिलक धारण किया है, किस प्रकार से मुकुट आदि है, उनके बाल आदि कैसे हैं, कौन कौन सी मालाएं उन्होंने धारण की हैं, कौन कौन से अलंकार उन्होंने पहने हैं। तो इस प्रकार से बारकाई से जब हम देखते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है। और चरणों से भगवान का दर्शन शुरू करते हैं तो चरणों को देखने मात्र से मन में जो सुमेरु पर्वत के भांति पाप है या पाप करने की प्रवृत्ति है वो सब क्या होता है, खत्म होता है। इसलिए स्क्रिप्चर्स या शास्त्र कहते हैं कि भगवान का दर्शन हमें उनके चरणों से लेकर उनके मुख कमल तक करना चाहिए। और दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, भगवान का स्तुति करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्तुति, भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। भगवान को ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हैं, उनके एक्टिविटीज को ग्लोरीफाई करना। भगवान जैसे भगवान को ग्लोरीफाई किया जाता है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, पतित पावन हेतु तव अवतार, कि हे कृष्णा आप वास्तव में पतितों को पावन करने के लिए हैं, आपने इस प्रकार से इन महान महान आसुरों का वध किया है, इस प्रकार से अपने डिवोटीज को अपने बचाया है। तो भगवान की स्तुतियां मीन्स कुछ प्रेयर्स हमें सीखनी पड़ेगी। और तीसरी चीज क्या करनी चाहिए, भगवान के दर्शन के समय में अपने लिए कुछ बून या आशीर्वाद भगवान से मांगे। हाँ, आशीर्वाद क्या मांगे, उसको कहते कि हम प्रार्थना करें। उससे पहले हमें अपनी जो गिरी हुई सिचुएशन है वो भगवान के सामने रखे कि कृष्णा इस संसार में सबसे अधिक पतित या नीच व्यक्ति कोई है तो कौन है, मैं हूं, इसलिए मुझे आपकी कृपा से, कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता है। भगवान का दर्शन कर जैसे प्रणाम करते हैं उठकर, हमें भगवान का पहले दर्शन करना चाहिए ठीक से, फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए, फिर अपनी जो फॉलन सिचुएशन है वो भगवान के सामने हम रखें और फिर हाँ उनसे प्रार्थना करें अपने आध्यात्मिक उन्नति हेतु। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी स्तुतियां अलारनाथ की निकलने से पहले प्रेमावेश नृत्य गीत कैलक तक्षण देखते आई लता वैसे जत जान। तो भगवान से हमेशा अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद जब लंदन गए थे तो काफी उनकी आयु हो गई थी और आखिरी लंदन विजिट था प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़कर काफी समय तक खड़े थे। तो उनके डिसाइपल गया और पूछा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद आपको तो भगवान को प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो भगवान के इतने प्रिय भक्त हो, तो आप क्या कर रहे हो? तमाल कृष्ण महाराज गए पीछे से, वो प्रभुपाद के साथ बड़ा फ्रेंडली व्यवहार करते थे, कान में जाकर बोले प्रभुपाद क्या क्या मांग रहे हो आप प्रभुपाद भगवान से? प्रभुपाद कहते हैं मैं भगवान से यही मांग रहा हूं कि कृष्णा आपकी माया से मुझे क्या करो, बचाओ। तो प्रभुपाद कि वो डिसाइपल कहते आपको तो माया का कोई भय नहीं है? प्रभुपाद कहते यही मेरे भक्तों का प्रॉब्लम है कि वो माया से डरते नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान से हमेशा अपने आध्यात्मिक उन्नति हेतु निरंतर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने फिर भगवान अलारनाथ के सामने प्रेमावेश में आकर कीर्तन आदि शुरू किया और जैसे ही कीर्तन की आवाज उठी तो आसपास के बहुत सारे लोग अब वहां आकर खड़े हो गए। चौधरी के थे सब लोग बले हरि हरि प्रेमावेश मध्य नृत्य करे गौर हरि। तो सब लोग जब वहां एकत्रित हुए थे चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को देखकर सब लोग बोलने लगे हरे हरे। क्या बोलने लगे? जोर से बोलिए और जोर से। तो सारे भक्त जोर जोर से हरे हरे का कीर्तन करने लगे और सबके बीच में चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश में आकर नाचने लगे। कांचन सदृश देह अरुण वसान फुलकाश्रु कंप स्वेद तहाते भूषण। तो चैतन्य महाप्रभु वैसे ही इतने सुंदर हैं और उनका जो शरीर है पिघले हुए सोने के भांति उसका वर्ण है और सैफ्रॉन या केसरिया वस्त्र से उनका शरीर सुसज्जित था। और जब भगवान के प्रेम में वो इतने मग्न हो गए हैं कि शरीर से सारे प्रेमावेश के जो लक्षण है आंखों से आंसू बहना या शरीर का कंपन होना ये सब हो रहा था, तो साथ ही साथ उनके शरीर में पसीने की बूंदे भी आने लगी जिससे उनका शरीर और अधिक सुंदर लगने लगा। देखिया लोके रमना हैल चमत्कार जस लोक आई से कह नाई जाय घर। तो जितने भी लोग वहां आए थे चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे कीर्तन में भाग ले रहे थे और किसी की भी इच्छा नहीं हो रही थी कि अभी घर वापस जाओ। सबको क्या लग रहा था? उसी कीर्तन में मैं अपना जीवन रखू या फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ कहां चला जाओ? दक्षिण भारत साउथ इंडिया चला जाओ। केह नाचे केह गाय श्री कृष्ण गोपाल प्रेमेत भासिल लोक श्री वृद्ध आबाल। तो इतने सारे लोग एकत्रित हुए थे वहां, कुछ लोग श्री कृष्ण गा रहे थे, कुछ गोपाल गोपाल कह रहे थे और सारे लोग कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूप से डूबे हुए थे, चाहे वो बच्चे हो स्त्रिया हो या वृद्ध हो। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गने यही रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। तो यहाँ ये भविष्यवाणी की नित्यानंद प्रभु ने, कौन सी भविष्यवाणी? हाँ कि एक ऐसा दिन आने वाला है इस जगत में, बल्कि जो भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने की थी वो ओरिजिनल भविष्यवाणी नित्यानंद प्रभु ने यहाँ की जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाने वाले थे। नित्यानंद प्रभु सारे भक्तों को देखकर कहने लगे कि जल्द ही एक ऐसा समय आने वाला है कि पूरे विश्व के नगर नगर और गांव गांव में लोग हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे. किसका? हरे कृष्णा जोर से,
हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे. तो नित्यानंद प्रभु ने वास्तव में ये भविष्यवाणी की थी कि एक समय आने वाला है जब सारे नगर नगर और गांव गांव में लोग कृष्ण नाम का कीर्तन करेंगे और उस कीर्तन में नाचेंगे. जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जहां जहां मतलब नगर नगर और ग्राम ग्राम में मेरे नाम का कीर्तन होगा. अति काल है लोक छाड़ी आना जाए तबे नित्यानंद गोसाई सृजिला उपाय. तो हजारों हजारों लोग उस कीर्तन में ही थे और किसी की इच्छा नहीं हो रही थी कि वहां से हम निकल जाए. सबको लग रहा था कि उधर ही रहना चाहिए. फिर नित्यानंद प्रभु ने एक योजना बनाई कि उस समय दोपहर का समय हो गया था. नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को वहां से भोजन करने के लिए ले गए. तो सारे लोग जहां चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं उस स्थान में सारे लोग दौड़ने लगे. मध्यान करिया आइला देवता मंदिरे निजगन प्रवेशी कपाट दिल बहिर द्वारे. तो जो अलालनाथ टेम्पल था चैतन्य महाप्रभु को उसके अंदर लिया गया और अंदर से दरवाजों को बंद किया गया. तबे गोपीनाथ दुई प्रभु रे भिक्षा कराइला प्रभु शेष प्रसाद सबे बाटी खाइला. तो फिर चैतन्य महाप्रभु को मध्यान्ह का भोजन कराया और फिर सबने चैतन्य महाप्रभु का जो उच्चिष्ट प्रसाद है उसको स्वीकार किया. सुनी सुनी लोक सब असी बहिर द्वारे हरी हरी बली लोक कोलाहल करे. तो जब सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को देख नहीं पा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु को एक मंदिर के अंदर अंदर से बंद किया था तो सारे लोग उस दरवाजे के पास आ गए और जोर जोर से हरी हरी का कीर्तन करने लगे और सब और एक प्रकार का कोलाहल मच गया था. तबे महाप्रभु द्वार कराइल मोचन आनंदे आसिया लोक पाइल दर्शन. तब चैतन्य महाप्रभु दरवाजे को खोलते हैं. अभी सारे लोग फिर से चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं. तो इस प्रकार से सुबह से लेकर दोपहर या संध्या तक सारे जो भक्त हैं केवल कीर्तन में नाच रहे थे, गा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अभी दक्षिण भारत के लिए निकले नहीं. चैतन्य महाप्रभु वो जो रात्रि है वो अलालनाथ में ही बिताते हैं. लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस रात्रि सोते नहीं है, अपने निकटतम भक्तों को अपने पास बिठाते हैं और कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं. कृष्ण की लीलाओं को पूरे रात्रि भर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ सुनते हैं. और जब दूसरे दिन सुबह का समय होता है तो चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त का आलिंगन करते हैं फाइनली और कहां के लिए निकल पड़ते हैं? दक्षिण भारत के लिए. तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब सबका आलिंगन किया निकलने से पहले और अपना फेस चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की ओर किया चलने के लिए, जैसे महाप्रभु ने सबकी ओर पीठ किया तो जितने भी जगन्नाथपुरी के भक्त उनको छोड़ने आए थे वो सारे मूर्छित होकर वहां गिर पड़ते हैं क्योंकि उनसे सहा नहीं जाता. किसका वियोग? चैतन्य महाप्रभु से सेपरेशन या उनका वियोग. और फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से वो अपना एटीट्यूड या भावना प्रदर्शित करते हैं. वज्र के समान कठिन चैतन्य महाप्रभु फिर से किसी की ओर मोड़ के नहीं देखते. चैतन्य महाप्रभु फिर निकल पड़ते हैं और उनका जो सेवक है उनके पीछे कृष्णदास उनके लिए उनके कपड़े और उनका जो पानी का कमंडलु है वो लेकर चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे चलने लगते हैं. तो ऐसे सारे जो भक्त हैं उस दिन वहीं निवास करते हैं और कोई भी कुछ खाता नहीं है. सब लोग फास्टिंग या उपवास करते हैं और पूरे दिन चैतन्य महाप्रभु के लिए रोते हैं कि क्यों नहीं हम चैतन्य महाप्रभु के साथ चल पड़े. फिर कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जिस प्रकार से एक उन्मत्त सिंह सड़क पर चलता है, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में निकल पड़े। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम रखा है चैतन्य सिंह। क्या रखा है? चैतन्य सिंह। और प्रेमावेश से चैतन्य महाप्रभु पूर्णत्व है और अपने जीवा से निरंतर कीर्तन करते हुए जा रहे थे। और वो कौन सा कीर्तन था? कृष्णा 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 हे Krishna 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 Hare यात्रा को शुरू करते हैं कृष्णदास अपने जो सेवक है उनके संग में। तो ये जो कीर्तन है इसको गाते हैं। और जहां जहां दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु चले और पूरे सड़क में वो नाचते थे और ये जो विशेष कीर्तन है इसको गाते थे। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इस गीत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे राम राघव, भगवान राम आप क्या करो, मेरी रक्षा करो, और हे केशी आसुर के संहारक कृष्ण या केशव आप मेरा पालन करो। इस प्रकार से यात्रा का परम उद्देश्य क्या है कि भगवान के नामों का कीर्तन हमारे जीवा से होना चाहिए या भगवान के नामों में अधिक से अधिक अनुराग यात्रा में हमारा बढ़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु पूरे रास्ते में इस प्रकार से कीर्तन करते हुए जा रहे थे और किसी को वो सामने देखते थे उसको उसको पकड़कर उसको बोलते थे कि हरि हरि बोलो। क्या बोलो?
हरी हरी बोलो।
तो जो भी चैतन्य महाप्रभु को मिलता था उसे वो निवेदन करते थे, उसको कहते हरि हरि बोलो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे थे और महाप्रभु का दर्शन पाने के लिए दक्षिण भारत के हजारों लोग उनके आसपास आते थे, दौड़कर चैतन्य महाप्रभु को देखना चाहते थे। तो कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु ओडिशा को छोड़ते हैं और आंध्रा में पदार्पण करते हैं या प्रवेश करते हैं। जो भी सामने उनको व्यक्ति मिलता था चैतन्य महाप्रभु उसका आलिंगन करते थे और आलिंगन करने मात्र से उसके अंदर अपनी जब सारी शक्ति है उसको डाल देते थे और उस शक्ति के द्वारा वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम में इतना उन्मत्त हो जाता था कि वो व्यक्ति अपने गांव जाते जाते कृष्ण के लिए रोता था, कृष्ण के प्रेम में पागल होकर नाचने लगता था, गाने लगता था। और गांव में पहुंचते ही उसके गांव वाले यदि उसको देखते थे तो पूरा गांव भक्त बन जाता था। कैसे? केवल देखने मात्र से। क्या करने से?
देखने
मात्र से। ये चैतन्य महाप्रभु की शक्ति थी कि दक्षिण भारत में हजारों हजारों लोगों के हृदय को चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, टच किया। इसलिए जारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम, यही मत वैष्णव कैला सब निज ग्राम। तो जहां भी किसी को मिलते थे उसको कहते थे कह कृष्ण नाम, किसका नाम बोलो,
कृष्ण
का नाम बोलो। तो इस प्रकार से सारे गांव वालों को भी वो व्यक्ति भगवान का भक्त बना देता था और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की ऐसी शक्ति से उनके दर्शन से हजारों हजारों लोग कृष्ण के भक्त बन गए। हजारों हजारों जो गांव है दक्षिण भारत के वो कृष्ण के भक्तों में एक प्रकार से कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा शुरू करते हैं और वो सन्यासी थे। तो सन्यासी का कोई पहले से ही कोई नियोजित नहीं होता कि उसको कहाँ रहना है, कौन उसके लिए भोजन बनाएगा, नहीं। सन्यास का मतलब है भौतिक रूप से मरना। क्या करना? मरना। सन्यास लेना मीन्स उसको इसकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मेरे लिए बहुत अच्छे दिन होंगे, बल्कि सन्यास का मतलब है उसको सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि मेरा जो जीवन है वो कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित है और मैं वास्तव में सोशल रूप से, सोशल लाइफ नहीं होता सन्यासी का, सोशल रूप से वो मरा हुआ है, डेड है उसके परिवार के लिए, बाकी सब लोगों के लिए। तो ऐसा सन्यास का प्रमुख उद्देश्य है कि उसका मन, उसका शरीर और उसकी वाणी कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूपेण नियोजित होना। इसलिए सन्यासी अपने हाथ में क्या रखते हैं, डंडा रखते हैं। एक डंडा वो लेके चलते हैं ना सन्यासी, तो उसमें तीन बांस के टुकड़े होते हैं और वो तीन बांस के टुकड़े इस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसका मन, शरीर और वाणी भगवान की सेवा में क्या है, लगा हुआ है। तो सन्यास का असली और एक उद्देश्य है, सन्यास मतलब उसे बाहर निकलना और प्रचार करना। हाँ ये सन्यासी का जीवन है, और सन्यासी का जीवन अपने लिए नहीं दूसरों के हित के लिए, वो स्वयं कष्ट उठाने के लिए तैयार होता है। हाँ तो चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े दक्षिण भारत की यात्रा में अपने लिए नहीं दूसरों के, दूसरे लोगों को कृष्ण देने के लिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु निकले तो चैतन्य महाप्रभु अपने भोजन आदि के लिए वो अलग अलग गांवों से भिक्षा मांगते थे, और वो भिक्षा मांगकर उनका जो सेवक है हाँ वो उसको कुक करता था, और फिर चैतन्य महाप्रभु उसको ग्रहण करते थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े भक्त बने, और आगे चलकर वो महान गुरु आदि बने, और पूरे विश्व का उन लोगों ने उद्धार किया। यही मत कहला, इस प्रकार से फिर चैतन्य महाप्रभु भारत की जो दक्षिण सीमा है वहां तक जाते हैं, और सारे लोगों को कृष्ण भावना प्रदान करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर विश्वास नहीं करता, उसको लगता है कि ये सब क्या है, एक कहानी है, ये तो चलो ऐसा कोई वर्णन किया होगा कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए और उन्होंने हजारों हजार लोगों का उद्धार किया, ऐसे कैसे संभव है। यदि कोई इस प्रकार की भावना रखता है तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उस व्यक्ति का इसी लोक में नाश हो जाएगा, और परलोक मतलब मृत्यु के उपरांत भी उसको अच्छी गति प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए आवश्यक है कि चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उन पर एक व्यक्ति ने विश्वास या श्रद्धा रखनी होगी, और ये अनुभव करना होगा कि ये चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीलाएं हैं ये कोई सर्वसाधारण नहीं है, बल्कि भगवान की जो लीलाएं हैं जिनको कहते हैं अचिंत्य, मतलब हमारे चिंतन शक्ति से परे हैं। भगवान भी अचिंत्य हैं, भगवान को केवल ग्रंथों को पढ़ पढ़ के जाना नहीं जा सकता, या हजारों हजारों प्रवचन आदि कोई सुने और कोई कह सकता है कि मैं भगवान को जान सकता हूं या जान गया हूं, इम्पॉसिबल है। हमारी इतनी छोटी बुद्धि, भगवान विभु है और हम अनु है, तो विभु को जानना असंभव है एक छोटे अनु के लिए। तो केवल भगवान अचिंत्य है, और उनको अचिंत्य की भावना से ही हम एक प्रकार से समझ सकते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में सबसे पहले उन्होंने एक तीर्थ स्थान में विजिट किया, और वो तीर्थ स्थान कौन सा था, कुर्म क्षेत्र। कौन सा था, कुर्म क्षेत्र। विशाखापट्टनम से पहले ये स्थान आता है कुर्म क्षेत्र, जहां चैतन्य महाप्रभु भगवान कुर्म अवतार, कुर्म अवतार का वही एक टेम्पल है दक्षिण भारत या पूरे भारत वर्ष में, तो कुर्म भगवान का दर्शन करते हैं वहां चैतन्य महाप्रभु, और कुर्म भगवान का दर्शन करते हैं, उनको स्तवन, उनको प्रणाम आदि करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु वहां नाचने और गाने लगते हैं। बल्कि ये भगवान कुर्मा के जो विग्रह थे ये पहले ढके हुए थे, लेकिन जब दक्षिण भारत से एक महान आचार्य जगन्नाथपुरी गए थे जिनका नाम था श्रीपाद रामानुजाचार्य, क्या नाम था, रामानुजाचार्य, तो हम दो दिन में रामानुजाचार्य के कई स्थानों का विजिट करेंगे तो आपको और सुनने का मौका मिलेगा। तो जब रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी गए, और जगन्नाथपुरी गए तो उनको सब कुछ अजीब सा लग रहा था, जगन्नाथपुरी में देखा कि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, और उनकी सेवा बड़े अलग ढंग से वहां के जो पंडा लोग हैं पुजारी लोग कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम एक स्थान से आते हैं तो हमारी एक मनोवृत्ति होती है देखने की, समझने की, तो हम किसी नए स्थान में जाते हैं तो सबसे पहले गलतियां ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, हाँ अरे यहाँ ये लोग कैसे हैं, भगवान के भक्त होकर ये लोग हाँ कैसे सेवा कर रहे हैं। तो वैसे ही रामानुजाचार्य वहां पहुंचे और उन्होंने देखा ये पंडा लोग ये कैसी सेवा कर रहे हैं भगवान की, ये उचित नहीं है, उन्होंने गलतियां निकालना शुरू कर दिया। और वहां का जो राजा गजपति था उनको कहा कि मैं नया प्रोसेस सिखाता हूं हां कैसे जगन्नाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो राजा उनसे बहुत प्रभावित था क्योंकि वो महान भक्त थे। उन्होंने कहा कि कल सुबह आप आओ और सारे यहाँ के जो पंडा लोग हैं जगन्नाथ की सेवा करते पुजारी उनको शिक्षा दे दो कि सही में पूजा अर्चना कैसे होनी चाहिए। तो सुबह का समय हुआ, जगन्नाथ के जो मेन पुजारी हैं पंडाज हैं वो सारे लोग लाइन में खड़े हो गए सिम्मा द्वार के सामने, किसका वेलकम करने के लिए? रामानुजाचार्य का, कि वो आएंगे और हमें सिखाएंगे कि कैसे भगवान को जगाना चाहिए। क्योंकि सेवा शुरू कैसे होती है, सबसे पहले तो अपनी शुद्धि करके, हाँ पहले तो सबसे पहले जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि आचमन और फ्रेश वस्त्र आदि धारण करके भगवान की स्तुतियां करके फिर जो पुजारी है मंदिर में जाता है, जाने से पूर्व भगवान की स्तुतियां गाता है, फिर भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करता है घंटी बजाकर, कोई नहीं ना इधर अंदर नॉक करके अंदर प्रवेश करता है, फिर भगवान के चरणों को पकड़कर स्तुतियां करके उठाता है। इसलिए किसी को जगाना है तो कहा उसको पकड़ना चाहिए चरणों में। हाँ तो फिर भगवान की स्तुति आदि करता है, भगवान को जगाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब पुजारी लोग वहां खड़े थे, उन्होंने सोचा कि रामानुजाचार्य हमें सिखाएंगे कैसे सेवा करनी चाहिए। तो सुबह देखा कि 6 बज गए 7 बज गए 8 बज गए अभी तक रामानुजाचार्य वहां नहीं पहुंचे। तो सबने देखा कि उनके रूम में जाकर ढूंढते कि अभी तक क्यों नहीं आए, देखा कि रूम क्या है खाली है, वहां कोई नहीं है। तो फिर भगवान जगन्नाथ ने उस रात्रि में क्या किया था, श्रीपद रामानुजाचार्य को वहां से उठा लिया था जगन्नाथपुरी से और उनको दूर फेंक दिया, दूर और कुर्म क्षेत्र जगन्नाथपुरी से। ट्रेन से आप जाते हो तो 5 घंटे लगते, कितने 5, इतना दूर भगवान ने रात्रि में उनको उठाया, इतना दूर फेंका कि इस गांव में फेंका जिसका नाम क्या था, कोरमा क्षेत्र। वहां चैतन्य महाप्रभु पहली बार पहले गए, दक्षिण भारत की यात्रा का पहला दर्शन कोरमा क्षेत्र का था। तो रामानुजाचार्य अपनी आंख खोली कि आज मुझे इन पंडों को जाकर सिखाना है भगवान की पूजा कैसे करती है करते हैं। तो आंख खोली तो देखा मैं अपने रूम में नहीं हूं, किसी और स्थान में हूं। तो रामानुजाचार्य उठते हैं, देखते तो वो उस मंदिर में थे कुर्म क्षेत्र के। पहले वहां के लोग ये भगवान कुर्म की पूजा ये सोचकर करते थे कि ये शिवलिंग है, क्या है, शिवलिंग है, शिवजी सोचकर उनकी पूजा करते थे। और फिर बाद में जब रामानुजाचार्य गए उन्होंने उसको चेक किया और ठीक करके देखा तो ये शिवलिंग नहीं है, वो क्या है, कुर्म का अवतार, भगवान कुर्म जो कच्छप रूप है वो है। आज भी वहां जाते हो उस मंदिर में तो आपको ऐसे सड़कों में कछुए कछुए मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मंदिर के आसपास बहुत सारे कछुए हैं क्योंकि वहां भगवान कुर्म का विशेष मंदिर है। तो ऐसे स्थान में चैतन्य महाप्रभु गए, भगवान कुर्म का दर्शन किया, हंसने लगे नाचने लगे रोने लगे कीर्तन करने लगे और सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए हम वहां पहुंच गए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब वहां थे तो वहां एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो हमेशा सन्यासी कोई आता है तो उनकी सेवा करने के लिए लालायित रहता है कि कैसे हमें मौका मिलेगा कि ऐसे महान सन्यासी की हम सेवा करें जो वैदिक ब्राह्मण थे। तो उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को इन्वाइट किया कि आप हमारे घर आ जाओ। उस समय तो ऐसे नहीं था कि कोई होटल में जाकर आपको रहना है और किसी जगह होटल्स में जाकर खाना है, नहीं, उस समय इतना अच्छा कल्चर था कि कोई व्यक्ति को पानी कैरी करना नहीं पड़ता था। भागवतम या शास्त्र में वर्णन आया है कि कलयुग का एक लक्षण है कि लोग अन्न को बेचेंगे और पानी भी कलयुग में क्या होगा, बेचा जाएगा। अब सोचो ये पहले ही लिखा हुआ है और अब हम जीवित भी नहीं रख सकते पानी के बोतल के बिना। हाँ तो ऐसे कलयुग में उस समय यदि लोग सोचे कि कैसे ये संभव है कि पानी को बेचा जाएगा, इम्पॉसिबल। हाँ, तो ऐसे ही महान महान लोग होते थे कि जहां प्रसादम की कोई कमी नहीं थी और रहने आदि की कोई कमी नहीं थी कि व्यवस्था आदि के लिए किसी को पे करना पड़े। तो चैतन्य महाप्रभु उस गांव में गए, उस ब्राह्मण ने उनको इनवाइट किया अपने घर में, और उस ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में ले जाता है और ले जाकर उनके चरण धोता है, और चरणों को धोकर उस चरणामृत को खुद पीता है और अपने पूरे परिवार को पिलाता है। और वास्तव में ये कल्चर आज भी है दक्षिण भारत में। मुझे याद है मैं यहाँ दक्षिण भारत 2009 में आया था, तो एक स्थान में विजिट किया जहाँ कई सारे फैमिलीज ने हमारा वेलकम किया था। चिदंबरम एक सिटी है यहाँ तमिलनाडु में, चिदंबरम पांडिचेरी के नजदीक। तो चिदंबरम वो स्थान है जहाँ शिवजी का बहुत, जैसे मीनाक्षी मंदिर है इतना ही बड़ा और विशाल, चिदंबरम नटराज मंदिर है। जब भगवान डांसिंग, शिवजी डांसिंग फॉर्म में नृत्य कर रहे हैं और एक कृष्णा गोपाल के रूप में वहां बैठे हुए हैं, तो उस मंदिर का हम दर्शन करने जा रहे थे। हमने सोचा कि कहाँ रहेंगे हम, तो ऐसे किसी एक भक्त को फोन किया, उसने कहा कि यहाँ टेम्पल के पास कुछ महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं? महाराष्ट्रियन फैमिलीज रहती है जिनका अराउंड 40 फैमिलीज है, उनका गोल्ड का बिजनेस है, सब सोनार हैं। तो हमने कैसे तो एक का फोन नंबर ढूंढा जो डिवोटी थे, और फिर फोन करके उनके वहां गए। तो उन्होंने, हम चार डिवोटीज थे, हमारे स्वागत के लिए घर के बाहर आंगन में पूरा जल, फ्लावर्स और कई सारी चीजें कि ये भक्त लोग हमारे घर आएंगे उनके चरणों को हम धोएंगे सबसे पहले, क्या करेंगे। हम वहां पहुंचते ही हैरान हो गए कि अराउंड 30-40 लोग घर के आंगन में खड़े हैं केवल स्वागत करने के लिए और चरण धोने के लिए, माला पहनाने के लिए। तो हम वैसे डर गए, हमने कहा पहले ये हटाओ यहां से। और फिर उनके वहां उस फैमिली के घर में हमने 2 दिन वहां स्टे किया, और फिर सब जो 40 फैमिलीज थे जिन्होंने थोड़ा सा उनको इस्कॉन का टच था, इस्कॉन को इतना अधिक वो टच में नहीं थे, थोड़ा सा उन्होंने एक बार पद यात्रा जा रहे थे इस्कॉन की, उन्होंने भक्तों की थोड़ी सी सेवा की थी, जिसके कारण जब हम गए तो उन्होंने इतना 2 दिन हमें कथा कीर्तन और सब डिवोटीज के घर में विजिट करना, और पर्सनली उन्होंने हमें टेम्पल ले गए, दर्शन आदि करवाया। तो इस प्रकार से साउथ में एक प्रकार से देखा जाए आज भी इस प्रकार का कल्चर है। वो ब्राह्मण उनको ले जाता है महाप्रभु को, और फिर उनको बड़े स्नेह और आदर के साथ भोजन आदि खिलाता है, और जो भी उच्चिष्ट प्रसाद था वो चैतन्य महाप्रभु का वो ब्राह्मण और उनके परिवार के लोग स्वीकार करते हैं। फिर ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करता है कि आपके जो चरण कमल है वो ब्रह्मा शिवजी जैसे देवता गण भी पूजा करते हैं, हमारा कितना सौभाग्य है कि आपके चरण कमल आपके घर, हमारे घर में पड़े हैं। तो फिर वो ब्राह्मण कहते हैं कि क्या कहो आपको, मेरे भाग्य की कोई सीमा नहीं है, कि या मेरे भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता कि परिवार, जन्म और मेरा जो कुल है वो आज वास्तव में धन्य हो गया है। तो ऐसे वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे थे। फिर ब्राह्मण ने एक विशेष प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, उन्होंने कहा कृपा कर प्रभु मोरे जा तुम संगे सहित ना पारी दुख विषय तरंगे। तो कई बार होता है लोग जब घर गृहस्थी आदि के कार्य में होते हैं तो वो उग जाते हैं। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति इस्कॉन के टच में आता है और जिसको रोज ऑफिस जाना पड़ता है और वो मंदिर जाते रहते तो उसको ऑफिस जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, वो कहते ये सब छोड़ दो और बस ये भक्तों के साथ नाचो गाओ सेवा करो यात्राएं करो। तो वैसे ही ये जो ब्राह्मण था चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गया, और फिर चैतन्य महाप्रभु को निवेदन करता है कि आप कृपा करो कि आप मुझे अपने साथ क्या करो, हमेशा के लिए ले चलो।
सहितेना पारियामी विषय तरंग, कि संसार की जो दुख है इसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। और वास्तव में देखा जाए कि हमारे जीवन में दुख समंदर की लहरों के भांति आ रहे हैं। जैसे लहरें कभी रुकती नहीं है, दिन हो या रात्रि हो, उसी प्रकार से हमारे लाइफ में जन्म से लेकर बुढ़ापे तक, मृत्यु तक इतनी लहरें आती है दुख की। कभी शरीर तंग कर रहा है, कभी मन तंग कर रहा है, कभी दूसरे लोग हमें तंग कर रहे हैं, तो इतना सारा कष्ट आते जाता है। तो वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करता है कि आप मुझे ले चलो अपने साथ, बस फिर मैं फ्री हो जाऊंगा सारे कष्ट से। तो चैतन्य महाप्रभु एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं, और वो वास्तव में वो उपदेश इसलिए है ऐसे व्यक्ति के लिए जो गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे सुखी रहा जा सकता है, उस व्यक्ति के लिए ये उपदेश है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये उनसे सुना तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे ऐसे बात कभू ना कहेबा, ग्रह रहे कृष्ण नाम निरंतर लयबा। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि कोई इस प्रकार से अपना घर आदि को छोड़े, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इस प्रकार की बात फिर से मत मुझे कहो कि आप घर को छोड़कर मेरे साथ जाना चाहते हो। बल्कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम घर में ही रहो लेकिन अपने जीवा से क्या करो, सतत कृष्ण नाम कहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये वास्तव में सार है, ग्रहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले गाको, चाहे आप घर में रहो या जंगल में रहो, लेकिन आप हरि का नाम सदैव आपको लेते रहना चाहिए। कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जंगल में भी जाता है लेकिन हरि नाम संकीर्तन नहीं करता, भगवान के नामों का उच्चारण अपने जीभ से नहीं करता, तो उसका जीवन एक पशु के भांति है, कुत्ते बिल्ली आदि के भांति है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जहां मर्जी रहो लेकिन हरि हरि कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। फिर दूसरी चीज चैतन्य महाप्रभु ने दी, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमर आज्ञाय गुरु हया तारा यही देश। ये श्लोक हमेशा हम सुनते हैं, ये किसने बोला था, चैतन्य महाप्रभु ने कूर्मा ब्राह्मण को। उस ब्राह्मण को कहा कि सबसे पहले एक चीज करो, निरंतर कृष्ण नाम का जप करो, और दूसरा क्या करो, जारे देखो तारे कहो। इस डेली एक्टिविटीज को करते हुए, अपने कार्यों को करते हुए आप यदि जिसको भी मिलते हो उसको क्या कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, मतलब कृष्ण नाम का उपदेश दो। इस प्रकार से आप दूसरों को प्रचार करो, या आप इस प्रकार से आप गुरु बन सकते हो। कभु ना बाधे बे तुमार विषय तरंग, पुनरपि यही ठाई पावे मोर संग। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये दो चीजें आप करते रहोगे। वैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यहाँ कि यदि कोई गृहस्थ तीन चीजों को करता है तो मैं पर्सनली उसके घर में निवास करता हूं। तो वो तीन चीजें क्या है, सबसे पहले भगवान उस व्यक्ति के घर में निवास करते हैं जो ये तीन कार्यों को करता है निरंतर। पहला है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि भगवान के नामों का जप करना। चैतन्य महाप्रभु का सपना क्या है, क्या सपना है, मेरा सपना सबका जपना। चैतन्य महाप्रभु का यही सपना है कि मेरा सपना है कि सब लोग भगवान के नामों का जप करें। तो पहला है भगवान के नामों का जप करना चाहिए व्यक्ति को पूरे परिवार के साथ, और दूसरा है गीता और श्रीमद् भागवतम को सुनना, या गीता या श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, या स्टडी करना या पढ़ना। और तीसरी चीज है कि आप जिसको भी मिलते हो
विस व्यक्ति को भगवान के बारे में बताओ, उस व्यक्ति को भगवान के सेवा में नियुक्त करने का प्रयास करो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते कि ये तीन कार्य कोई करता है, उस व्यक्ति के घर में मैं निवास करता हूं, और इन तीन कार्यों को कोई करता है तो ये जो भौतिक जीवन की जो कष्टमय प्रणाली है उससे वो व्यक्ति कभी भी प्रभावित नहीं होगा। हम कभी भी प्रभावित नहीं होंगे या इतनी सहन करने की शक्ति हम में आ जाएगी इस संसारिक कष्टों को कि हम कभी उससे विचलित नहीं होंगे, या ये कष्ट हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन में कभी बाधा नहीं बनेंगे। जनरली संसार में व्यक्ति जब थोड़ा सा भगवत भक्ति करने लगता है, थोड़ा सा जप करने लगता है, मंदिर जाने लगता है, और उसको थोड़े कष्ट आ जाए, सबसे पहले भगवान को गालियां देना शुरू करता है और भगवान को दोष देता है, छोड़ देता है। बल्कि वो एक परीक्षा है कि आप कितने भगवान की सेवा में दृढ़ हो, डिटर्मिनेशन को भगवान चेक करते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति इस भौतिक स्ट्रगल से कभी विचलित नहीं होगा यदि वो व्यक्ति इन तीन कार्यों को करता है। यही मत जार घरे करे प्रभु भिक्षा, सही ऐसे कहे तारे कराए यही शिक्षा। तो इस प्रकार से पूरे दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जहां जहां गए और जिस जिस व्यक्ति ने उनको अपने घर में भिक्षा ग्रहण करने के लिए बुलाया, चैतन्य महाप्रभु ने सबको ये तीन शिक्षाएं दी। कौन सी तीन शिक्षाएं थी? पहला था भगवान के नामों का जप करना, दूसरा था गीता भागवत का श्रवण और अध्ययन करना, और तीसरा था जिसको भी मिलो आप उसको कृष्ण के बारे में बताओ। तो महाप्रभु पूरे साउथ इंडिया यात्रा में या दक्षिण भारत के विजिट में जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए वहां वहां उन्होंने शिक्षा प्रदान की। तो यहाँ कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इस यात्रा के दौरान चैतन्य महाप्रभु कभी कभी किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे या किसी मंदिर में रहते थे या सड़क के किनारे पेड़ के नीचे रहते थे। सोचो हमें रहना पड़ रहा है ऐसे नहीं, चैतन्य महाप्रभु अपने सेवक को लेकर जाते जाते अंधेरी रात हो जाए तो सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ही सो जाते थे, फिर दूसरे दिन सूर्योदय होकर फिर अपनी यात्रा कंटिन्यू करते थे। तो हमें व्यक्ति दुखी क्यों है जीवन में या हर समय? क्योंकि वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है और अधिक अपने लाइफ में, बल्कि जो चीजें उसके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो सोचता है आई नीड मोर, और चाहिए मुझे, और चाहिए। मतलब हम जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि हम वर्तमान में जीते हैं तो हम क्या है? सुखी हैं। हम हमेशा भविष्य के आगे के बारे में सोचते हैं कि अरे अभी अभी मिल रहा है आपको, सोचो एक प्लेट प्रसाद मिल रहा है तो आप सोचते कि शाम का क्या होगा मेरा। खाते समय अभी अभी दोपहर का प्रसाद लेना छोड़कर खाते समय आप सोचते हो शाम का क्या होगा, शाम को भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो फिर इस समय भी दुखी रहता है और शाम आते आते आने तक भी व्यक्ति दुखी रहता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं, कभी कभी अपनी रात सड़क के किनारे बिताते हैं और जहां जहां जिस व्यक्ति के घर में जाते हैं उनको इस प्रकार का उपदेश देते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जगन्नाथपुरी से महाप्रभु ने यात्रा शुरू की, पूरे दक्षिण भारत का भ्रमण किया, इस चीज को वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जहां जहां गए उन्होंने केवल इन तीन चीजों का पूरे दक्षिण भारत में उपदेश दिया, और सुबह होते ही फिर चैतन्य महाप्रभु चल पड़ते थे। और इस ब्राह्मण के घर में जब दूसरे दिन सुबह हुई तो चैतन्य महाप्रभु कुर्म ब्राह्मण को छोड़कर निकल पड़े, बल्कि ये जो कुर्म ब्राह्मण उनको उनके साथ जाना चाह रहा था, महाप्रभु को छोड़ने के लिए बहुत दूर तक चला गया और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने छोड़ा और वापस आया। जब वो वापस आया तो एक दूसरा ब्राह्मण उन्हें मिला जिनका नाम था वासुदेव विप्र। क्या नाम था?
वासुदेव
विप्र। ये वासुदेव विप्र ऐसा ब्राह्मण था, बहुत महान व्यक्ति था, लेकिन उसको कोढ़ की बीमारी हुई थी। कौन सी बीमारी? कोढ़ की बीमारी। और कोढ़ की बीमारी होकर लेप्रसी जो उसके पूरे शरीर में कीड़े भरे हुए थे, और कोढ़ की बीमारी में बॉडी के अंग क्या होते हैं? गलने लगते हैं, सुंदरता खत्म हो जाती है, और इतना कष्ट होता है शरीर में, और उसका बॉडी कीड़ों से भरा हुआ था। और ये इतना दयावान व्यक्ति था कि कोई कीड़ा यदि शरीर से गिरता है तो उसको वे उठाते थे, फिर से अपने शरीर में क्या करते थे? रखते थे कि चलो ये इस जीव को सुखी होने दो। ऐसा संभव है हमारे लिए? नहीं, ये केवल महान व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। तो एक रात ये वासुदेव विप्र ने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु कुर्म ब्राह्मण के घर आए हैं, और मुझे जाना है उनको दर्शन करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए जाना है। लेकिन जब एक कोड़ी वासुदेव विप्र वहां पहुंचा दूसरे दिन सुबह, तो देखा कि चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल पड़े हैं। और जैसे ये सुना तो बेहोश होकर ये वासुदेव विप्र कुर्म ब्राह्मण के आंगन में गिर पड़ता है और रोने लगता है। और अचानक चैतन्य महाप्रभु उस स्थान में लौट आते हैं। लौट आकर चैतन्य महाप्रभु उस वासुदेव विप्र का क्या करते हैं? आलिंगन करते हैं। कौन है जो ऐसे कुष्ठ रोगी का आलिंगन कर सके? तो भगवान से अधिक दयालु इस संसार में कोई नहीं है। सबसे अधिक हमसे कोई प्रेम कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? कृष्ण कर सकते हैं। यह हमेशा हमें याद रखना चाहिए इस भौतिक जगत में। तो भगवान इतना अधिक प्रेम करते हैं कि जिसकी तुलना किसी और प्रेम से नहीं की जा सकती। तो ये जो वासुदेव विप्र महान भक्त थे, उनके ऊपर एक कोढ़ का बीमारी था, तो चैतन्य महाप्रभु उनको उठाते हैं, उनका आलिंगन करने मात्र से उनका कोढ़ की बीमारी दूर हो जाती है, और इस संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति वो बनते हैं वासुदेव विप्र। और देखकर चैतन्य महाप्रभु को आनंद आता है कि देखो ये मेरा डिवोटी कितना सुंदर लग रहा है। तो लेकिन वासुदेव विप्र बहुत दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? हाँ, वो भूले नहीं अपने सिचुएशन को। हाँ, जैसे जो व्यक्ति गरीब से धनवान होता है वो कभी भी अपनी सिचुएशन को भूलता नहीं है कि मैंने कैसे गरीब स्थिति में अपने दिन काटे हैं। जिनको वैसे ही विरासत में बहुत धन प्राप्त होता है उसको उसका कोई वैल्यू नहीं होता, और वो दूसरों का आदर सम्मान आदि भी नहीं करता। तो उसी प्रकार से ये जो ब्राह्मण थे ये कभी भूले नहीं कि मैं कितना नीच था, मेरी कैसी स्थिति थी। तो उस ब्राह्मण को याद आया। किसकी याद आई हुई होगी बताइए? सुदामा ब्राह्मण की। किसके? सुदामा ब्राह्मण जब भगवान को द्वारका में मिलने गए, और इतने गरीब थे कि एक दिन तक खाने के लिए उनके पास नहीं था, लेकिन वो जब भगवान के पास गए तो भगवान ने ये सोचा नहीं कि यार ये गरीब व्यक्ति से क्यों मैं मिलू, इसको भगा देता हूँ यहाँ से। आज भी हमारे घर में हमारा कोई गरीब मित्र या रिश्तेदार आ जाए तो हम उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करते, उसको क्या करते हैं? किसी न किसी बहाने से भगाते कि कब ये निकल जाएगा घर से। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ नहीं। जब वासुदेव सुदामा ब्राह्मण आया तो भगवान ने उनको बैठने के लिए स्थान दिया, उनके चरण धोए, रुक्मिणी को कहा कि इसको फैन करो, चामर करो, और भगवान ने उनका आलिंगन किया। जब सुदामा ब्राह्मण वापस जा रहा था अपने घर तो एक चीज को याद कर रहा था, वो ये याद कर रहा था कि मैं क्या हूं, कहम दरिद्र पापीयान कहा कृष्ण से निकेतना। मैं कहा दरिद्र पापी व्यक्ति और कहा कृष्ण लक्ष्मी के पति। ऐसे सोच रहे थे सुदामा ब्राह्मण कि भगवान छह ऐश्वर्य से पूर्ण होकर भी मेरे जैसे गरीब का आलिंगन उन्होंने किया, इतना प्रेम मुझसे दिखाया भगवान ने। ये सोचते सोचते वो सुदामा ब्राह्मण अपने गांव पहुंचते हैं। वहां पहुंच के क्या देखते हैं? सब कुछ बदल गया है। फिर भी उनको घमंड नहीं आता, थोड़ा सा भी भूलते नहीं अपनी सिचुएशन को। वैसे ये ब्राह्मण
जो सुदामा ने ये श्लोक बोला था उस श्लोक को महाप्रभु के सामने बोलते हैं, कहते कि हे चैतन्य महाप्रभु, मैं तो इतना निम्न पापी कुष्ठ रोग से मर रहा था, लेकिन फिर भी आपने मुझे क्या कर दिया, आलिंगन करके इस संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति बनाया। हाँ, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि आप क्या करो, मेरे प्रति हाँ एक विशेष हाँ कृपा करो। कौन सी कृपा करो कि आपने मुझे सुंदर बनाया है, तो इस सुंदरता का मुझे घमंड आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा कि मैं क्या हूं, सुंदर व्यक्ति हूं, और ये घमंड या अहंकार इस संसार में मुझे डुबो देगा या आपसे दूर ले जाएगा। जैसे कुंती महारानी जो एक स्त्री थी, कृष्ण को प्रार्थना करती है कि ये जिनके पास ये चार चीजें हैं वो भगवान की भक्ति सरलता से नहीं कर पाते। चार चीजें कौन सी है? एक है सुंदरता, एक है अत्यधिक धन होना, एक है बहुत ज्ञान होना, और चौथी चीज क्या है, जन्म ऐश्वर्य सुतश्री, और उच्च कुल में जन्म लेना। ये चार चीजें जिसके पास होती है उसके अंदर बहुत जल्दी घमंड आ जाता है, और इस घमंड के कारण वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करता, वो भगवान के सामने झुकना नहीं चाहता, भगवान के नाम को लेना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से कुंती महारानी कहती है, तो ऐसे वासुदेव विप्र ने भी भगवान से यही प्रार्थना की कि मैं सदैव विनम्र बना रहो। क्या बना रहो? विनम्र बना रहो। और ये भक्ति का सीक्रेट है कि हमें सदैव विनम्रता का भाव हमारे हृदय में बना होना चाहिए। कभी भी अपने अचीवमेंट से थोड़ा भी गर्व हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, और भगवान जो हमारे लिए स्थिति दे देंगे, परिस्थिति, उसको आनंद से स्वीकार करना चाहिए। कैसे स्वीकार करना चाहिए? आनंद से। तो भगवान इस एटीट्यूड को जब देखते हैं तो अपनी कृपा उस भक्त के ऊपर डालना शुरू करते हैं। तो जैसे ये वासुदेव विप्रन के पास इतनी सुविधा हो गई, सुंदर हो गए, लेकिन उन्होंने कहा मुझे अहंकार आएगा तो आपको भूल जाऊंगा अभिमान के कारण। तो उन्होंने कहा बताइए प्रभु मैं क्या करूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे कभु तुमार ना हवे अभिमान, निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक चीज तुम करोगे तो कभी भी इस संसार का अभिमान या घमंड या गर्व तुम्हारे हृदय को स्पर्श नहीं करेगा, और वो क्या है, निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। निरंतर आप कहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी चीज चैतन्य महाप्रभु ने कही उस ब्राह्मण को, कहा कृष्ण उपदेश कर शिविर निस्तार, आची रात कृष्ण तुमा करे बेन अंगीकार। दूसरी चीज उस ब्राह्मण को कही महाप्रभु ने कि एक तो स्वयं कृष्ण नाम लो, और दूसरा दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरित करो कृष्ण के नामों का उच्चारण करने के लिए। तो फिर क्या होगा, ये करने मात्र से, ये दो चीजें करने से कृष्ण तुम्हें स्वीकार करेंगे, और कभी भी ये भौतिक घमंड गर्व या अहंकार तुम्हारे हृदय को स्पर्श नहीं करेगा। इस प्रकार से वासुदेव विप्र का उद्धार करते हैं चैतन्य महाप्रभु, और वहां से चैतन्य महाप्रभु अचानक अंतर्धान हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। फिर ये दोनों ब्राह्मण एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। ये दो ब्राह्मण कौन कौन से थे? कुर्मा ब्राह्मण और वासुदेव विप्र। और चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों को सोचकर स्मरण करके रोने लगे। ये है चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम का उनका जो व्यवहार है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को नया नाम पड़ा इस लीला से। उनका नाम क्या पड़ा? वासुदेवामृतप्रद। क्या नाम पड़ा? वासुदेवामृतप्रद, मतलब वासुदेव ब्राह्मण को जिन्होंने अमृत प्रदान किया, जो बिल्कुल कुष्ठ रोगी थे लेकिन फिर भी उनको सबसे इस संसार का सुंदर व्यक्ति बनाया। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, यही तो कहिला प्रभुर प्रथम गमन, कुर्म दर्शन वासुदेव विमोचन। हाँ तो वो कृष्णदास कविराज कहते कि मैंने ये महाप्रभु का फर्स्ट यात्रा जो शुरू हुआ उसके ये दो पास टाइम आपको सुनाए, किस प्रकार से उन्होंने कुर्म देव का दर्शन किया, कुर्म ब्राह्मण को उपदेश दिया और वासुदेव जो ब्राह्मण था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था उनका महाप्रभु ने क्या किया, उद्धार किया। श्रद्धा करिए करे श्रवण आची राते मिले तारे चैतन्य चरण। तो वो कहते कि जो व्यक्ति ये महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा का और श्रद्धा के साथ इस वर्णन को सुनता है, इसको सुनने मात्र से उस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। क्या प्राप्ति होगी? चैतन्य महाप्रभु के चरणों की। चैतन्य लीला आदि अंत नाही जाने, से लिखी जय महान तेरा मुखे सुने। कृष्णदास कविराज कहते कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का मैं आदि और अंत नहीं जानता, जो भी मैंने बड़े बड़े भक्तों के मुख से सुना है उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्रंथ के रूप में लिख रहा हूँ। तो ये महान भक्त का विनम्रता का भाव है। इथे अपराध मोर नालयो भक्तगण, तोमा सवार चरण मोर एकांत शरण। वो कहते हैं उन भक्तों को जो जो चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं या जो सुन रहे हैं, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि हे भक्तों श्रोताओं, आप मेरा किसी भी प्रकार के अपराध को क्या करो, स्वीकार मत करो या विचार मत करो इन अपराधों पर। तोमा सवार आपके चरण कमल ही एकमात्र मेरे क्या है, शरण है। श्रीरूप रघुनाथ पदे जर आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो एक अध्याय हमने क्या किया, पूरा श्रवण किया है दक्षिण भारत की यात्रा का। तीन अध्यायों में दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन है, जिसमें कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि रघुनाथ रूप गोस्वामी से लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी इन षड गोस्वामियों के चरण कमलों के चरणों पर मैं प्रार्थना करता हूँ और सदैव उनकी सेवा की कामना करता हूँ और उनके चरण कमलों पर चलते हुए इस चैतन्य चरितामृत की क्या कर रहा हूँ, मैं रचना कर रहा हूँ। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा का शुभारंभ करते हैं और इस शुभारंभ में हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं दो भक्तों के माध्यम से। उन भक्तों का नाम क्या था, कुर्मा ब्राह्मण और वासुदेव विप्र। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के, चैतन्य चरितामृत के समवेत गौर भक्त वृंद के, निताय गौर प्रेमानंदे।